पृष्ठ संख्या 146। बॉक्सर आंदोलन का स्वरूप। बॉक्सर आंदोलन की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। इसके यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना आवश्यक है। बॉक्सर संगठन कोई सैन्य संगठन था या कोई कट्टरपंथी संप्रदाय? दूसरा, बॉक्सर आंदोलन छिंग विरोधी था या छिंग समर्थक? बॉक्सर आंदोलन विदेश विरोधी था या ईसाई धर्म विरोधी? बॉक्सर आंदोलन कृषक आंदोलन था या जनसाधारण आंदोलन? बॉक्सर आंदोलन एक महायुद्ध था या महाविपदा? बॉक्सर आंदोलन प्रगतिवादी था या रूढ़िवादी? 1898 ईस्वी तक बॉक्सरों ने स्वयं को थुवेन अथवा सैन्य संगठन नहीं कहा था। उनके नाम में यह परिवर्तन राज परिवार से उनके संबंधों में परिवर्तन के कारण आया। वस्तुतः बॉक्सरों को अपने राजनीतिक स्वरूप में बहुत कमी दिखाई देने लगी। उनका मूल नारा था फान छिंग फूमिंग, अर्थात छिंग हटाओ मिंग लाओ। छिंग वंश को हटाकर मिंग वंश को सिंहासन पर बिठाना उनका मूल उद्देश्य था। परंतु चीन के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में साम्राज्यवादियों के बढ़ते प्रभाव तथा साम्राज्यवाद विरोधी भावना के प्रसार को देखकर उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। उन्होंने विदेशियों का विरोध करो फान यांग और विदेशियों का नाश करो मिए यांग जैसे नारे अपना लिए। इससे बॉक्सरों को साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा दिया गया सैन्य संगठन का दर्जा ही नहीं अपितु साथ में पाओ छिंग मिए यांग, अर्थात छिंग का समर्थन करो। विदेशियों का नाश करो का नया नारा भी स्वीकारना पड़ा। इसके बाद चू हुंग तंग और भिक्षु पेन मिंग जैसे नेताओं के समर्थकों ने सन 1899 ईस्वी में गिरजाघरों पर आक्रमण आरंभ कर दिए। जी एन स्टाइगर का मत है कि बॉक्सरों का संबंध किसी कट्टरपंथी संप्रदाय से नहीं था, परंतु यह 1898 ईस्वी में छिंग सरकार के कहने पर बना एक सैन्य संगठन था। उनका तर्क यह है कि क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित कोई कट्टरपंथी गुप्त संस्था ईसाई केंद्रों पर इस तरह आक्रमण न करती जैसे कि बॉक्सरों ने किए। मूलतः विदेशी लोग ईह छुआन अथवा सत्यमूलक समन्वय का मुक्का नामक एक गुप्त चीनी संगठन को ही बॉक्सर कहने लगे थे। इस संगठन के नाम से स्पष्ट है कि वे सत्य एवं शांति की रक्षा करना चाहते थे, चाहे उसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। इसके सदस्य चीनी खेल बॉक्सिंग का अभ्यास करते थे, अतः संगठन को बॉक्सर्ज कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि इह छुआन, जिसे बाद में इह थुआन कहा जाने लगा, का जन्म श्वेत कमल संप्रदाय से हुआ, जो स्वयं मिंग राजाओं द्वारा गठित गुप्त संस्थाओं का एक समूह था। इसका उदय सम्राट चिया छिंग के शासनकाल 1796 से 1870 ईस्वी में हुआ। इसकी गतिविधियों को 1808 ईस्वी में कुचल दिया गया, परंतु फिर भी चिरली और सांतुंग में यह संगठन गोपनीय रूप में काम करता रहा। स्टाइगर का मत है कि बॉक्सर संगठन राजा के आदेश से बना एक स्वयंसेवी सैन्य संगठन था, परंतु यह मत संदिग्ध है क्योंकि 1899 ईस्वी के मध्य तक बॉक्सरों एवं राजदरबार के मध्य किसी संबंध का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके विपरीत चैटर थान कहते हैं कि श्वेत कमल संप्रदाय, द व्हाइट लोटस सेक्ट, विशाल तलवार संघ, द ग्रेट सवर्ड सोसाइटी तथा अष्ट्रिक द एट ट्रीग्राम, इन तीन गुप्त संस्थाओं में बॉक्सरों का सीधा संबंध था। विक्टर पर्सेल का मानना है कि बॉक्सर आंदोलन स्वतः एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ एवं उसका किसी सरकार से कोई संबंध नहीं था। इसके विपरीत यह कुछ ऐसे गुप्त संगठनों से जुड़ा था जिन्हें सरकार विद्रोह का केंद्र मानती थी। फान वन लान के अनुसार बॉक्सर आंदोलन बॉक्सरों और विशाल तलवार संघ के विदेश विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था। उन्होंने यह भी बताया है कि बॉक्सरों में एकता का अभाव गुप्त संगठनों का विशेष लक्षण रहा है। इन्हीं के मत में बॉक्सरों के जीवन दर्शन में धर्म का एक विशेष स्थान था। संगठन में सम्मिलित होने से पहले प्रत्येक बॉक्सरों को धर्म दीक्षा लेनी पड़ती थी। खान का यह भी विश्वास है कि युद्ध के लिए जाने वाले सभी बॉक्सर कृषक और श्रमजीवी वर्ग के पवित्र भावना वाले किशोर थे। अंधविश्वासी होने के कारण वे सभी आदेशों का निष्ठा से पालन करते थे। द बॉक्सर हु वेंट टू बैटल वेयर ऑल चेस्ट जुवेनाइल ऑफ द पीजेंट एंड वर्किंग क्लासेज। द कॉन्स्टेंट्स ऑफ सुपर स्टिशन मेड द कमांडमेंट्स सैक्रोसैंक टू देम। इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए हुशंग कहते हैं कि बॉक्सरों द्वारा दैवी रक्षा की प्रार्थना करना श्वेत कमल संगठन के मंत्र जाप की प्रक्रिया के समान था। उन्होंने यह भी कहा कि श्वेत कमल संगठन और बॉक्सर दोनों ही एक से छोटे छोटे तथा बिखरे हुए असंगठित गुटों के रूप में थे। हुशंग की मान्यता है कि बॉक्सर एक गुप्त संस्था ही थे। थान चुंग का कथन है कि नियेन और श्वेत कमल विद्रोह ही बाद में बॉक्सर आंदोलन के रूप में विकसित हुए। जेरोम छन कहते हैं कि उस समय अनेक प्रकार के गुप्त एवं सैन्य संगठन विद्यमान थे। उसी प्रकार बॉक्सर भी कई प्रकार के थे। बॉक्सरों की सामाजिक संरचना सैन्य अथवा गुप्त संस्थाओं से भिन्न नहीं थी। द बॉक्सर सोशल कंपोजिशन शोज नो डिफरेंस फ्रॉम डेट ऑफ आइदर द मिलिशिया और द सेक्रेट सोसाइटीज इंडिकेटिंग रिलीजियस सेक्ट्स। इसी अस्पष्टता के कारण एक संस्था से दूसरी प्रकार की संस्था के रूप में इस आंदोलन का परिवर्तन बहुत सरलता से हो गया। सरकार को भी इसे अपने संरक्षण में सैन्य इकाइयों में बदल देने का आधार मिल गया। छन का यह भी कहना है कि बॉक्सर आंदोलन के सदस्य एवं नेता समाज के सभी वर्गों से आए थे। इनमें अधिकांश कृषक परिवारों एवं शहरी निम्न मध्य वर्ग के थे। विभिन्न प्रकार के सदस्य एवं नेता समाज के सभी वर्गों से आए थे। इनमें अधिकांश कृषक परिवारों एवं शहरी निम्न मध्य वर्ग के थे। विभिन्न प्रकार के सदस्यों वाले इस संगठन में जल एवं भूतल परिवहन कर्मचारी, हस्तशिल्पी, भारवाहक, छोटे दुकानदार, फेरी वाले, भिक्षु, दिहाड़ी मजदूर, विद्यालयों के कुछ अध्यापक और उनके छात्र आदि सभी सम्मिलित थे। सांतुंग में आंदोलन में आने से पहले इसके 15 शीर्ष नेता नमक के स्मगलर, डाकू, सैनिक, भगोरे, चिकित्सक, स्थानीय बदमाश, अपराधी या किशोर थे। बहुत से सैनिकों ने भी आंदोलन में भाग लिया। जब छिंग शासन ने आंदोलन का समर्थन करना आरंभ किया तो अधिकारी एवं संभ्रांत वर्ग के लोग अपने परिवारों सहित इसमें सम्मिलित हो गए। विक्टर पर्सेल के अनुसार 1889 ईस्वी में बॉक्सरों में मांचू विरोधी और विदेश विरोधी साधारण लोग दोनों थे। उनमें छिंग समर्थक और छिंग विरोधी दोनों थे, परंतु मन ही मन मांचू शासन का विरोध करने वालों की संख्या अधिक थी। उत्तरी चीन की शोषित व क्रुद्ध जनता, आक्रामक ईसाई केंद्रों एवं विदेशी साम्राज्यवादियों तथा इन दोनों के बीच फंसे छिंग सरकार के संबंधों की जटिलता के कारण इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना बहुत कठिन है कि यह आंदोलन छिंग विरोधी था या छिंग समर्थक। विदेशी मामलों एवं साम्राज्यवादियों के हाथ चीन के प्रभुसत्तात्मक अधिकारों को बेचने के विषय में ढुलमुल नीति के कारण छिंग वंश को जन विरोधी और ईसाई समर्थक माना जाता था। जब तक सरकार को अपने सुरक्षा के लिए कोई संकट दिखाई नहीं दिया, तब तक सरकार ने बॉक्सरों के पक्ष विपक्ष में कोई नीति नहीं बनाई। हुशंग के अनुसार जब सरकार बॉक्सरों को दबाने या शांत करने में सफल नहीं हुई तो उसने बेमन से बॉक्सर विरोधी घोषणा कर दी। यद्यपि निर्विवाद रूप से अंतिम दिनों में छिंग शासन ने बॉक्सरों का समर्थन किया, परंतु आंदोलन के आरंभिक काल में सरकार से उसके किसी औपचारिक संबंध का कोई पूरा प्रमाण नहीं मिलता। इस बात की अधिक संभावना प्रतीत होती है कि सन 1900 ईस्वी में हुए विदेश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बॉक्सर मूलतः छिंग वंश के आरंभिक काल में जन्मे कट्टरपंथी संप्रदायों के प्रभाव से बनी स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में उभरे होंगे। आरंभ में वे छिंग सरकार और विदेशियों दोनों का विरोध करते थे, परंतु कालांतर में उन्होंने कुछ परंपरावादी एवं विदेश विरोधी अधिकारियों के प्रभाव में आकर छिंग बचाओ विदेशी हटाओ, प्रोटेक्ट द छिंग डिस्ट्रॉय द फॉरेनर्स का नया नारा अपना लिया। विदेशियों में भी ईसाई धर्म प्रचारक ही उनके कोप का मुख्य निशाना बने, क्योंकि साधारण चीनी यह समझते थे कि इन्हीं प्रचारकों की गतिविधियों से उनका शोषण अधिक होता था। इससे स्पष्ट है कि बॉक्सर आंदोलन विदेश विरोधी था और ईसाई धर्म प्रचारक विदेशी होने के कारण इसका लक्ष्य बने। इससे स्पष्ट है कि बॉक्सर आंदोलन विदेश विरोधी था और ईसाई धर्म प्रचारक विदेशी होने के कारण इसका लक्ष्य बने। फिर भी इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ बॉक्सर मांचू विरोधी भी रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे छिंग समर्थकों के साथ यह सोचकर मिल गए होंगे कि विदेशी ही दोनों के समान शत्रु थे। चीन के इतिहास में बॉक्सर आंदोलन का स्थान इसलिए बन पाया क्योंकि बॉक्सरों ने उपनिवेशवाद का जमकर विरोध किया। विक्टर परसेल ने कहा है कि बॉक्सर आंदोलन विदेश विरोधी होने के कारण ही ईसाई विरोधी था। द बॉक्सर मूवमेंट वॉज एंटी फॉरन एंड देयर फोर एंटी क्रिश्चियन। उनके अनुसार बॉक्सर विदेशियों को प्रथम श्रेणी के शैतान तमोतज कहते थे और चीनी ईसाइयों और पश्चिम को दूसरी श्रेणी के शैतान अरमोतज कहते थे। इससे अनुमान किया जा सकता है कि बॉक्सर ईसाइयत का विरोध इसलिए करते थे कि यह विदेशी धर्म था। परसेल ने यह भी प्रतिपादित किया कि विदेशी सरकारों और अन्य संगठनों का चीनी मामलों में इतना अधिक हस्तक्षेप होने लगा था कि चीनवासी उसे सहन नहीं कर सके। परंतु बॉक्सरों द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति और उनका सैन्य प्रशिक्षण तथा शस्त्र सभी पारंपरिक प्रकार के थे। उन्होंने लोगों को शत्रु के विरुद्ध संगठित करने के लिए पारस्परिक विचारधारा और रीति रिवाज का आश्रय लिया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह आंदोलन प्रगतिशील उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय एक परंपरावादी आंदोलन था तथा यह नए औद्योगिक विकास से आतंकित और धीमी गति से प्रगति करते समाज की समस्याओं को परिलक्षित करता है।